ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से हुआ पारित। रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को एकीकृत कर नए स्वरूप की प्रसारण संस्था होगी संचालित। देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक अनुसंधान में जुटने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वैज्ञानिकों से किया आग्रह। साल ट्रेडिंग और खाद्य व्यवस्था कंपनी को 30,000 मैट्रिक टन चीनी के आयात में लगने वाले भंसार महसूल में 50% छूट देने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। और इजरायली हमले में गजा में करीब 40 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक सेवा विधेयक 2081 को पारित किया है। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के प्रतिवेदन सहित राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2081 को पारित करने के लिए प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधि सभा से बहुमत से पारित हुआ। बता दें कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकृत होने की तिथि से 31वें दिन से लागू होगा। इस विधेयक के लागू होने से रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन एकीकृत होकर नए स्वरूप की सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था संचालन में आएगी। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने नजदीक आ रहे पर्व त्योहारों के समय में दैनिक उपभोग्य सामानों में हो रही मूल्य वृद्धि, सड़कों पर मौजूद गड्ढे लगाए समस्याओं के समाधान करने का सरकार से आग्रह किया था। साथ ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने उपसभामुख इंदिरा राणा के विषय में सवाल उठे होने का जिक्र करते हुए नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं प्रमुख प्रतिपक्षी सहित प्रतिपक्षी दलों के सांसदों ने इसका विरोध किया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार ने सिरहा के चित्रलेखा यादव को ऑस्ट्रेलिया के लिए आवासीय नेपाली राजदूत पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आवासीय राजदूत पद पर चित्रलेखा यादव की सिफारिश करने के साथ ही फिजी, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी, भानुआटू, टूभालू, सोलोमन आयरलैंड, सामोआ, पलाउ, नाउरू, मार्सल आयरलैंड और टोंगा आदि राज्य के गैर आवासीय राजदूत पद पर 4 साल के लिए नियुक्त करने की सिफारिश करने का निर्णय बैठक ने किया है। इसी तरह बैठक ने भू उपयोग द्वितीय संशोधन नियमावली 2081 को स्वीकृत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी महासंधि क्रियान्वयन संबंधी राष्ट्रीय प्रतिवेदन स्वीकृत करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने अर्थ मंत्रालय और अंतर्गत के कार्यालयों के संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया है। बैठक ने साल ट्रेडिंग और खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी को 15,000 मैट्रिक टन की दर से कुल 30,000 मैट्रिक टन चीनी आयात के लिए लगने वाले टैक्स में 50% छूट देने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने विभिन्न देशों की उच्च स्तरीय यात्राओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश की समृद्धि के लिए नवीन शोध में जुटने का वैज्ञानिकों से आग्रह किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट की 47वीं प्रज्ञा सभा में नास्ट के कुलपति समेत रहे प्रधानमंत्री ओली ने रासायनिक मल एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण देशभर की मिट्टी रोगग्रस्त होने के कारण इसके इलाज लगात विषय पर जांच करने का वैज्ञानिकों से आग्रह किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल समक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पिछले 2 आर्थिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमंत्री ने परिषद के आर्थिक वर्ष 2079-80 और 80-81 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान में ही मौलिक हक के रूप में समाविष्ट खाद्य अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र, विकास साझेदार सहित संबंधित सभी निकायों को समन्वयात्मक रूप में काम करना चाहिए। कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आज संयुक्त रूप में आयोजित नेपाल खाद्य मंच का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति यादव ने यह बात कही। बता दें कि मंच में कृषि से संबंधित सरकार एवं गैर सरकारी क्षेत्र, युवा, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 500 लोगों की सहभागिता थी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि वीपी कोइराला के संदर्भ में अभी भी व्यापक अध्ययन और अनुसंधान होने की आवश्यकता है। वीपी कोइराला की 111वीं जन्म जयंती के अवसर पर पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग नेपाली कांग्रेस द्वारा आज आयोजित विचार गोष्ठी में सभापति देउवा ने ये बात कही। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि संविधान की रक्षा और क्रियान्वयन में जनता की खबरदारी की आवश्यकता है। नेकपा माओवादी केन्द्र मिर्चया नगर समिति द्वारा आज सिरहा में आयोजित कार्यकर्ता भेंट में उन्होंने ये बात कही। नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेश की दो दिवसीय परामर्श बैठक आज से महोत्तरी के बर्दिवास में शुरू हुई है। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी को मजबूत और एकजुट बनाने का कोई विकल्प नहीं है। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि जब माओवादी कमजोर होंगे तो बदलाव के मुद्दे पलट सकते हैं, इसलिए बदलाव की रक्षा के लिए मजबूत एकता के साथ आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी पुनर्गठन और जनपरिचालन कार्यक्रम सहित को आगे बढ़ाएंगे। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय सदस्य और प्रदेश पदाधिकारियों की सहभागिता है। विशेष अदालत ने मेलमची पेयजल परियोजना संबंधी भ्रष्टाचार के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 10 लोगों को सफाई दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश टेक नारायण कुंवर, तेज नारायण सिंह राय और मुरारी बाबू श्रेष्ठ की साझा पीठ ने यह फैसला किया। फैसले में परियोजना के तत्कालीन सचिव गजेंद्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रामचंद्र देवकोटा व सूर्य राज गडेल और परामर्शदाता एपीटसा के टीम लीडर शिव कुमार शर्मा को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस मामले से जुड़े पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित 10 लोगों को सफाई दी है। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग उपचार केंद्र राष्ट्रीय खिलाड़ियों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। देश का प्रतिनिधित्व कर अंतर्राष्ट्रीय खेल में योगदान देने वाले सभी खिलाड़ियों की हर साल हृदय सहित निशुल्क स्वास्थ्य जांच करने का समझौता हुआ है। आज आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल और युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजूलाल चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय खेल परिषद और शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग उपचार केंद्र के बीच समझौता हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास संचालित प्रशासन ने कहा है कि गजा पट्टी में इसराइल के ताजा हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। हमास संचालित सिविल डिफेंस प्रशासन ने कहा है कि ये हमला मानवीय मदद के लिए निर्धारित इलाके में हुआ और कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका है। इसराइली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में हमास के लड़ाकू के संचालन केंद्र पर हमला किया और इस अभियान में नागरिकों को नुकसान से बचाने के उपाय किए गए थे। भारत के उत्तराखंड केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सोन प्रयाग के समीप हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से हुआ पारित। रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को एकीकृत कर नए स्वरूप की प्रसारण संस्था होगी संचालित। देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक अनुसंधान में जुटने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वैज्ञानिकों से किया आग्रह। साल ट्रेडिंग और खाद्य व्यवस्था कंपनी को 30,000 मेट्रिक टन चीनी के आयात में लगने वाले भंसार महसूल में 50% छूट देने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। और इसराइली हमले में गजा में करीब 40 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।